भारत की राजनीति जब शुरू हुई तब इसमें त्याग, बलिदान, शुचिता और साधारण होना, इन चीजों पर असामान्य जोर दिया जाता था। यह सब शुरू हुआ था महात्मा गांधी के प्रण की वजह से कि वो शरीर पर एक कपड़ा लपेट कर रहेंगे। ऐसा नहीं था कि नेताओं ने वही तरीका अपनाया। बहुत से नेताओं ने अपने शौक पूरे किए, लेकिन पब्लिक के सामने कोशिश यही रही कि गांधी के रहने का तरीका ही प्रस्तुत किया जाए। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदला और भारत के नेता आधुनिक दिखने लगे। आज सांसद और मंत्री जिम जाते हैं, डांस करते हैं और सुंदर कपड़े पहनते हैं, अपने फैशन पर ध्यान देते हैं और एक भरपूर जीवन जीते हैं और जनता उन्हें कुछ नहीं कहती। हालांकि ये बहुत नई बात है, पिछले 10 सालों में ये डेवलपमेंट हुआ है। वरना एक वक्त था कि एक दिन में दो बार कपड़े बदलने की वजह से 14 साल पहले भारत के गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था, इतनी आलोचना हुई थी। यही नहीं, पुरुष नेता महिलाओं से अपनी नजदीकियों को लेकर बहुत सीक्रेट लाइफ बिताते थे। वो चाहते नहीं थे कि उनकी कोई बात बाहर आए, उन्हें सिर्फ एक पति के रूप में जाना जाए। बहुत से नेता तो दूसरी स्त्रियों से बात करने में भी कंफर्टेबल नहीं दिखते थे। उसी दौरान भारत में एक नेता ऐसा आया जो स्टाइलिश था, बढ़िया अंग्रेजी बोलता था, अच्छे कपड़े पहनता था, महिलाएं उससे बात करना चाहती थीं, वो खुद भी कंफर्टेबल था। लेकिन वो परंपरागत देसी नेता नहीं था। जब वो संसद में आया तो उसने जिम की मांग की थी। उस नेता का नाम है शशि थरूर। यही है इंडियाज ओल्डेस्ट टीनेजर, जिनकी बातें सोशल मीडिया पर हमेशा चर्चा का विषय बनी रहती है। शशि थरूर का जन्म लंदन में 9 मार्च 1956 को हुआ था। उनके पिता मूल रूप से केरल के थे, वहां के अखबार द स्टेट्समैन के ग्रुप एडवर्टाइजिंग मैनेजर थे। लेकिन जब शशि थरूर 2 साल के थे तभी उनका परिवार वापस इंडिया लौट आया था। उनके पिता का नाम चंद्रन थरूर था और माता का सुलेखा मेनन। थरूर की 2 बहनें भी हैं, शोभा और स्मिता। शशि थरूर के चाचा परमेश्वरन थरूर ने रीडर्स डाइजेस्ट की इंडिया में स्थापना की थी। ये लोग मूल रूप से पलक्कड़ केरल के निवासी थे। मीडिया से जुड़े पिता ने लंदन, बॉम्बे, कलकत्ता और दिल्ली में काम किया। इसीलिए थरूर की पढ़ाई मॉटफोर्ट स्कूल पैराकुट से हुई, फिर कैंपियन स्कूल मुंबई, फिर सेंट जेवियर्स कोलकाता, फिर सेंट स्टीफन से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन किया। थरूर सेंट स्टीफन्स में स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट भी थे और उन्होंने वहां पर क्विज क्लब भी बनाया था। थरूर का IIM अहमदाबाद और कोलकाता में भी दाखिला हो गया था, लेकिन उन्होंने फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी में एडमिशन लिया। उन्होंने MA और PhD की। थरूर को रॉबर्ट टी स्टीवर्ट प्राइज भी मिला था बेस्ट स्टूडेंट के लिए। फ्लेचर फोरम ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के पहले एडिटर भी रहे। PhD का विषय किताब के रूप में रीजन्स ऑफ स्टेट के नाम से 1982 में पब्लिश हुआ था। शशि थरूर ने इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन करने का भी मन बनाया था, क्योंकि उस समय सबसे हॉट सर्विस यही मानी जाती थी। लेकिन इमरजेंसी लगने की वजह से उनका ये प्लान बदल गया। 1979 में उन्होंने UN ज्वाइन कर लिया। उनकी पहली पत्नी तिलोत्तमा मुखर्जी बंगाली और कश्मीरी ओरिजिन की थी। वो कांग्रेस नेता कैलाश नाथ काटजू की पौत्री थी। शशि के साथ उनका कॉलेज का प्यार था। दोनों की 1981 में शादी हुई। बाद में तिलोत्तमा भी कॉलेज में पढ़ाने लगी थी। 1984 में दोनों को कनिष्क और ईशान जुड़वा बच्चे पैदा हुए। दोनों ही अमेरिका में हैं, राइटिंग और जर्नलिज्म के प्रोफेशन में। तिलोत्तमा अभी न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। 2007 में थरूर ने कैनेडियन डिप्लोमेट क्रिस्टा जाइल से शादी की, लेकिन इंडिया लौटते ही तलाक हो गया। अभी पत्नी के साथ डिवोर्स चल ही रहा था तब तक वो सुनंदा पुष्कर के साथ घूमना शुरू कर चुके थे। पूर्व कांग्रेसी नेता जितिन प्रसाद के शादी के रिसेप्शन में वो सुनंदा पुष्कर के साथ ही पहुंचे थे। सुनंदा पुष्कर एक कश्मीरी पंडित परिवार की थी। 27 जून 1962 को उनका जन्म हुआ था। वो लोग 1990 में जम्मू से बम्बई चले आए थे, क्योंकि आतंकवादियों ने उनके घर को जला दिया था। थरूर की तीसरी बीवी बनी सुनंदा पुष्कर एक बिजनेस वूमन थी, जिनका संदेहास्पद परिस्थितियों में निधन हो गया था। इस मौत के बाद शशि थरूर को मर्डर चार्ज फेस करना पड़ा। उनका भयानक मीडिया ट्रायल हुआ था। थरूर ने अपने 30 साल यूएन के साथ बिताए। यूएनएचसीआर यानी रिफ्यूजी के लिए जेनेवा में स्टाफ मेंबर के तौर पर उनके करियर की शुरुआत हुई। फिर 1981 से लेकर 1984 तक थरूर सिंगापुर में रहे। वहां वियतनाम को लेकर क्राइसिस चल रही थी। एक बोट हादसा भी हुआ था जिसमें बहुत से लोग मारे गए थे। इसके बाद उन्होंने पोलैंड के रिफ्यूजीज के लिए भी काम किया। 1981 में उन्हें अंडर सेक्रेटरी जनरल का स्पेशल असिस्टेंट बनाया गया। यही यूनिट आगे चलकर न्यूयॉर्क में पीस कीपिंग ऑपरेशंस डिपार्टमेंट बना। 1996 तक उन्होंने यूगोस्लाविया में पीस कीपिंग ऑपरेशन की टीम को लीड किया, क्योंकि वहां पर सिविल वॉर चल रहा था। 1996 में थरूर को यूएन के सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एवं कम्युनिकेशंस का डायरेक्टर बनाया गया। धीरे धीरे यूएन में उनका कद बढ़ता गया। यहीं पर उन्होंने पब्लिक इमेज बनाने की कला सीखी, जो बाद में खुद उनके काम आया। 2002 में उन्हें अंडर सेक्रेटरी जनरल बनाया गया कम्युनिकेशंस एवं पब्लिक इंफॉर्मेशन में ही। 2003 में उन्हें यूनाइटेड नेशंस कोऑर्डिनेटर फॉर मल्टीलिंग्विज्म की जिम्मेदारी दी गई। थरूर ने वहां पर कई काम किए। एक महत्वपूर्ण काम किया कि 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद दुनिया में बढ़े इस्लामोफोबिया पर सेमिनार कराया। ये यूएन का पहला ऐसा सेमिनार था। एक वार्षिक लिस्ट भी जारी की जिसका नाम था 10 अंडर रिपोर्टेड स्टोरीज द वर्ल्ड आउट टू नो अबाउट। 2006 में भारत सरकार ने थरूर को यूएन सेक्रेटरी जनरल के लिए नामित किया था। अगर वो जीतते तो 50 की उम्र में दूसरे सबसे कम उम्र के सेक्रेटरी जनरल होते। जब चुनाव हुए तो फाइनल राउंड में बान की मून को किसी भी परमानेंट मेंबर ने वीटो नहीं किया था, लेकिन शशि थरूर को अमेरिका ने वीटो कर दिया था। 2007 में थरूर ने यूएन से रिजाइन कर दिया। शशि थरूर के यूएन की उम्मीदवारी के बारे में कहा जाता है कि तत्कालीन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का अप्रूवल नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से हामी थी। इसके लिए भारत ने कई पुराने डिप्लोमेट्स को लॉबिंग के लिए भेजा, लेकिन भारत अपने मित्र देश अमेरिका को ही नहीं समझा पाया। बाद में यूएस एम्बेसडर जॉन बोल्टन ने खुलासा किया था कि कोंडालेजा राइस से निर्देश मिले थे कि उन्हें मजबूत सेक्रेटरी जनरल नहीं चाहिए। चूंकि थरूर कोफी अन्नान के साथ काम कर चुके थे, तो अमेरिका कोफी अन्नान जैसे और लोगों को नहीं चाहता था। एक रिपोर्ट आई थी कि लॉस एंजलिस में यूएससी यानी बर्ग स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन में थरूर डीन हो सकते हैं, लेकिन थरूर उसे मना कर दुबई की एक संस्था में चेयरमैन बन गए। उस संस्था ने त्रिवेंद्रम में एक बिजनेस कम्युनिकेशन का संस्थान खोला। थरूर ने त्रिवेंद्रम के लिए अपनी जगह बनानी शुरू कर दी थी। इस बीच उनको कई अवार्ड भी मिले थे। हालांकि उन अवार्ड से हिंदुस्तानी जनता को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। भारत छोड़ने के लगभग 33 साल बाद थरूर वापस देश आए थे, लेकिन तब वो देश में उतने ही पॉपुलर थे जितना कि किताबों में उनका नाम था। टीवी और अखबार में उनके ऊपर बोला और लिखा जा रहा था। इसके कुछ साल पहले ही शाहरुख खान की फिल्म स्वदेश आई थी। उसमें वैज्ञानिक मोहन भार्गव नासा छोड़कर हिंदुस्तान लौट आता है। हालांकि थरूर की कहानी मोहन भार्गव जैसी नहीं थी, लेकिन हम भारतीयों को यह चीज हमेशा फैसिनेट करती है कि कोई आदमी अमेरिका छोड़कर इंडिया रहने आया है। थरूर को भाजपा, कांग्रेस और कम्युनिस्ट तीनों ने अप्रोच किया था। इससे साबित होता है कि थरूर की आइडियोलॉजी बहुत क्लियर नहीं थी। उनको सब अपना मानते थे, लेकिन थरूर ने कांग्रेस ज्वाइन की क्योंकि उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी। थरूर ने कांग्रेस ज्वाइन की और केरल के त्रिवेंद्रम से चुनाव लड़े। उनके बारे में यही कहा गया कि वो बाहरी हैं, लेकिन थरूर ने कहा कि मैं एक भारतीय हूं जिसने कई देशों में काम किया है। मेरे अंदर से भारत कभी गया ही नहीं।
मैं गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं, लेकिन मेरी हिंदुइज्म एक इंक्लूसिव हिंदुइज्म है।
थरूर ने जब पहला चुनाव लड़ा तो कांग्रेस में भी बहुत लोगों को उम्मीद नहीं थी कि वो जीत पाएंगे, लेकिन शशि थरूर ने अपने यूएन के अनुभव को यहाँ काम में लगाया। 2009 में ही उन्होंने वेबसाइट बनवाई, फेसबुक पेज बनवाया और ट्विटर के माध्यम से लोगों तक पहुंचना शुरू किया। ध्यान रहे कि कांग्रेस ने बहुत बाद में सोशल मीडिया को अपनाया। राहुल गांधी ने तो 2015-16 में ट्विटर पर पदार्पण किया। फिर शशि ने अपने ऑडियो रिलीज करवाए जिसमें वो मलयालम में बोल रहे थे। पहले चुनाव में बात ये थी कि शशि थरूर के खिलाफ अफवाह ही ज्यादा उड़ाई जा रही थी, क्योंकि बाहर से आए नेता के खिलाफ ज्यादा कुछ था नहीं बोलने को, तो आसान रास्ता अपनाया जा रहा था। लेकिन शशि थरूर ने इन अफवाहों से पार पा लिया, अंततः वो वहां से जीत कर सांसद बने। यही नहीं, बाद में विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री भी बने। त्रिवेंद्रम के सांसद के रूप में थरूर देश के पहले ऐसे सांसद बने जिसने अपना सालाना काम का ब्यौरा देना शुरू किया। थरूर ने हमेशा मांग की है कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल की क्रूरता को लेकर एक मेमोरियल बनना चाहिए। लेकिन मंत्री बनने के 10 महीने के भीतर ही शशि थरूर पर आरोप लगा कि उन्होंने सुनंदा पुष्कर को आईपीएल की एक फ्रेंचाइजी के शेयर दिलाने के लिए पद का दुरुपयोग किया है। थरूर ने इन आरोपों को सिरे से नकारा और अपने मंत्री पद से रिजाइन कर दिया। इससे पहले उन्होंने पार्लियामेंट में स्पीच दी और कहा कि किसी भी जांच के लिए तैयार हूं। उसके कुछ समय बाद उन्होंने सुनंदा पुष्कर से केरल के अपने पैतृक घर में शादी कर ली। इस मामले के 2 साल बाद शशि थरूर को क्लीन चिट मिली और अब की मानव संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद भी मिला। एक अद्भुत मौका था। 33 वर्षों से विदेश में रहा व्यक्ति वापस इंडिया आता है और जनता उसे हाथों हाथ लेती है। ऐसे देखें तो ये संभव ही नहीं है कि वो व्यक्ति चुनाव जीत जाता, क्योंकि शहर में रह रहे व्यक्ति को गांव के लोग नकार देते हैं कि ये तो जीतने के बाद आएगा ही नहीं। तो ये एक सरप्राइज था इंडियन डेमोक्रेसी के लिए, जैसा कि हमारी डेमोक्रेसी हमेशा सरप्राइज करती रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब स्वच्छता अभियान लॉन्च किया तो तमाम सेलिब्रिटीज के साथ उन्होंने शशि थरूर को भी नामित किया। थरूर ने पब्लिकली मोदी के इस काम की तारीफ की और बदले में उनको पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से हाथ धोना पड़ा। लेकिन ये सब तो हंसी मजाक की चीजें थीं। इसके बाद जो चीज हुई उसने शशि थरूर की जिंदगी में भूचाल ला दिया। उनकी शादी तो सुनंदा पुष्कर के साथ हो गई थी, लेकिन 2015 में शशि थरूर के ट्विटर अकाउंट से कुछ ऐसे ट्वीट हुए जिसमें पाकिस्तान की पत्रकार मेहर तरार के साथ कुछ बातें थीं। शशि थरूर ने तुरंत कहा कि मेरा अकाउंट हैक हो गया है। मेहर तरार ने भी इसे नकार दिया, लेकिन सुनंदा पुष्कर ने नहीं नकारा। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया, ये औरत आईएसआई की एजेंट है और मेरे पति पर डोरे डाल रही है, और मर्दों को तो अटेंशन अच्छा लगता ही है। मैंने आईपीएल में इस आदमी के अपराधों की जिम्मेदारी ले ली थी, लेकिन इस चीज को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेहर तरार के साथ इस आदमी का अफेयर चल रहा है और मैं तलाक लूंगी।
मुझे 100 देश में फ्रेंड्स है जो गर्ल्स है लेकिन मेरे ख्याल में ये जो व्यक्ति जो पता नहीं किस किस्म के बकवास बोलते रहते हैं, इसको सुनने की ही और सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं।
मेहर तरार ने क्लियर किया कि उनका कोई अफेयर नहीं है शशि थरूर के साथ। इसके बाद शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर ने ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया कि वो दोनों खुश हैं अपनी शादी से। सुनंदा बीमार हैं और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन इस बात के अगले ही दिन दिल्ली के लीला होटल में सुनंदा पुष्कर की लाश मिली। शशि और सुनंदा इसी होटल में रह रहे थे क्योंकि दिल्ली स्थित उनके घर में पेंटिंग का काम चल रहा था। जो शुरुआती खबर मिली उसके मुताबिक सुनंदा ने पूरे कपड़े पहने थे। उनके शरीर पर हिंसा का कोई निशान नहीं था, लेकिन ऑटोप्सी करने आई टीम के एक सदस्य ने कह दिया कि उनके शरीर पर हिंसा के निशान थे। मीडिया में यह खबर फैल गई कि सुनंदा के शरीर पर 15 जगह हिंसा के निशान थे। दिल्ली पुलिस ने भी शशि थरूर के साथ कड़ी पूछताछ की। अचानक मीडिया में यह खबर भी फैली कि सुनंदा की लाश के पास से ड्रग भी मिला था। इसी तरह की तमाम अन्य कहानियां भी फैलती चली गई। शशि थरूर को ऑनलाइन जनता के एक सेक्शन ने अपनी बीवी का हत्यारा मान लिया। इस बात को लेकर उन्हें बुरी तरह ट्रोल भी किया गया। सुनंदा को लेकर उन्हें लंबे समय तक ट्रोल किया गया। एक पत्रकार नलिनी सिंह ने भी कह दिया कि सुनंदा ने उन्हें बताया था कि शशि और मेहर तरार का अफेयर चल रहा था और दोनों 2013 में दुबई में 3 दिन के लिए रुके भी थे। सुब्रमण्यम स्वामी ने शशि थरूर का नाम लिए बगैर कह दिया कि सुनंदा की मौत एक वेल प्लान्ड मर्डर है। 2018 में दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर पर 3000 पन्नों की चार्जशीट में पत्नी सुनंदा पुष्कर की आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। उन पर 498 ए और 306 की आईपीसी धाराएं लगी थी। 2021 में शशि इन सारे आरोपों से बरी हो गए। शशि थरूर की बातों में भारत और भारतीय संस्कृति का जिक्र बहुत रहता है। थरूर अक्सर त्योहारों में परंपरागत वस्त्र पहने हुए केरल के अपने गांव में नजर आते हैं। थरूर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर अमेरिका तमाम संस्कृतियों का मेल्टिंग पॉट है तो इंडिया थाली है जिसमें बहुत सारे व्यंजन अलग अलग कटोरों में रखे हुए हैं। हर टेस्ट अलग है और एक दूसरे से मिक्स भी नहीं होते, लेकिन रहते साथ ही हैं। एक टेड टॉक में शशि थरूर ने कहा था, भारत कोई एक एथनिसिटी या भाषा या धर्म के राष्ट्रवाद का देश नहीं है, बल्कि भारत में दुनिया की हर एथनिसिटी रहती है, हर धर्म है। हमारे संविधान में 23 ऑफिशियल भाषाएं हैं। हमारी ज्योग्राफी पहाड़ों और समुद्रों से बनी है। 1947 में ये देश टूटा, लेकिन इसका नाम इंडिया भी इंडस नदी से आता है जो कि पाकिस्तान में बहती है। वो कहते हैं, इंडिया एक आइडिया है, एक सनातन देश जो एक पुरातन सभ्यता से निकलता है, जिसका एक इतिहास है और जो एक प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी से चलता है। ये 21वीं शताब्दी का भारत है जिसके पास एक पुरानी कहानी भी है। थरूर भारत पर लगातार बोल सकते हैं। उनको भारत और भारत के राष्ट्रवाद पर बोलते हुए सुने तो आपको लगेगा ही नहीं कि वो किस पार्टी के नेता हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि वो भाजपा के लिए बोल रहे हैं। विदेशों में वो लगातार भारत के बारे में बोलते हैं। लगभग 2 दर्जन किताबें लिख चुके हैं जिनमें उपन्यास है, निबंध है और कितनी ही नॉन फिक्शन किताबें हैं। एक समय था कि वो ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले भारतीय राजनेता थे 2013 तक, लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद वो पीछे हो गए। थरूर दुनिया के उन नेताओं में से एक हैं जिन्होंने सबसे पहले ट्विटर ज्वाइन किया था। तब इंडिया में ट्विटर और फेसबुक का उतना शोर भी नहीं था। थरूर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम दुनिया के पहले देश थे जिसने औरतों को मेडिकल की पढ़ाई कराई। हमारे यहाँ से कई फीमेल पॉलिटिशियंस और लीडर्स निकले हैं, लेकिन ये भी सच है कि दूसरी तरफ हमारे गाँव में औरतों की स्थिति बहुत खराब है। एक इंटरव्यू में शशि थरूर ने कहा था कि लिखने से मैं अपनी भारतीयता को बरकरार रखता हूँ। इंडिया मेरे लिए मैटर करता है और मैं चाहता हूँ कि मैं भी इंडिया के लिए मैटर करूँ।
Why am I a Hindu? The obvious answer to this question is, of course, that it's because I was born one. Most people have little choice about the faith they grew up with. It was selected for them at birth by the accident of geography and their parents' cultural moorings. I'm more comfortable with the tenets of Hinduism than I would be with those of the other faiths of which I know. I've long thought of myself as liberal. Not merely in the political sense of the term, or even in relation to principles of economics, but as an attitude to life. To accept people as one finds them, to allow them to be and become what they choose, and to encourage them to do whatever they like, so long as it does no harm to others, is my natural instinct.
2015 में ऑक्सफोर्ड में थरूर ने एक स्पीच दी थी, जो कि बहुत वायरल हुई। इसमें उन्होंने कॉलोनियल रूल पर बोला था। वहां पर पता चला कि ब्रिटिशर्स की वर्तमान जनरेशन को कॉलोनियल रूल की क्रूरता के बारे में पता ही नहीं है।
Well, I stand to offer you the Indian example, Sir Richard. India's share of the world economy when Britain arrived on its shores was 23%. By the time the British left, it was down to below 4%. Why? Simply because India had been governed for the benefit of Britain. In Britain's rise for 200 years was financed by its depredations in India. In fact, Britain's industrial revolution was actually premised upon the deindustrialization of India.
सांसदों में एक अलग रुख अपनाते हुए Amazon Prime पर कॉमेडी सीरीज वन माइक स्टैंड में भी शशि थरूर ने पार्टिसिपेट किया और स्टैंड अप कॉमेडी की। उसमें उन्होंने खुद का भी मजाक उड़ाया और इसे काफी बेहतर तरीके से लोगों ने लिया। वहीं शशि थरूर ने लगभग 2 दर्जन किताबें लिखी हैं। हाल फिलहाल में तो उन्होंने कई किताबें निकाल दी हैं। वैसे तो थरूर ने 6 साल की उम्र में लिखना शुरू कर दिया था। चूंकि पिता चंद्रन थरूर द स्टेट्समैन के एडिटर थे, तो शशि को बचपन से ही पढ़ने लिखने का रोग था। उनकी स्टोरी प्रीफेस जर्नल में छपी थी 10 साल की उम्र में। 11 साल की उम्र तक उनका एक नॉवेल स्टेट्समैन में छप चुका था। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने उनकी किताब इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू मिलेनियम का जिक्र 2000 में भारतीय संसद में किया था। शशि थरूर ने अपनी किताब द एलिफेंट द टाइगर एंड द सेलफोन में लिखा है कि पूरी दुनिया में यहूदियों को परेशान किया गया था, लेकिन इंडिया में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। बल्कि 2500 साल पहले यहूदी केरल में आकर बसे थे, फिर मध्यकाल में भी बहुत से यहूदी इंडिया आए। एक बार शशि थरूर पर इजरायली जासूस होने का भी हास्यास्पद आरोप लगा था, लेकिन फलस्तीनी नेता यासिर अराफात के साथ उनकी एक तस्वीर ने इन आरोपों को खारिज करने में मदद की। शशि थरूर ने मुख्यतया इंटरनेशनल अफेयर और फॉरेन पॉलिसी पर लिखा है। इसके अलावा भारत के इतिहास पर भी उन्होंने काफी कुछ लिखा है। वो कॉलोनियल साम्राज्य को लेकर बहुत क्रिटिकल रहते हैं और विदेशों में उन्होंने इसको लेकर काफी कुछ बोला है। उनका उपन्यास द ग्रेट इंडियन नॉवेल भारत के सुंदर उपन्यासों में से एक माना जाता है, जिसमें उन्होंने महाभारत से बहुत सारी चीजों को रिलेट किया है। बाद में उनकी किताब एन एरा ऑफ डार्कनेस को साहित्य अकेडमी अवार्ड 2019 भी मिला था। उन्होंने कॉलोनियल युग पर कई किताबें लिखी हैं, इसमें इनग्लोरियस एम्पायर भी फेमस है। एक और किताब आई व्हाई आई एम अ हिंदू और इसे भी काफी प्रशंसा मिली। अब तो ऐसा लगता है कि शशि थरूर हर 6 महीने में किताब लिख रहे हैं। इसके अलावा दुनिया के बड़े बड़े पब्लिकेशंस जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स, द वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूज़वीक, टाइम्स ऑफ इंडिया इत्यादि में उन्होंने खूब लिखा है। इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, एशियन एज, डेक्कन क्रॉनिकल, मेल टुडे, सब में उन्होंने कॉलम लिखे हैं। शशि थरूर की अंग्रेजी सोशल मीडिया विशेषकर ट्विटर पर काफी चर्चा का विषय बनी रहती है। टाइम टू टाइम शशि कुछ ऐसे शब्द ट्वीट करते हैं जो काफी बड़े होते हैं और काफी कठिन होते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल बहुत होता है। उनके ट्वीट के बाद भारतीय युवा उसे लेकर कई दिनों तक खेलते रहते हैं। अपनी एक किताब का प्रमोशन करते हुए शशि ने ट्वीट किया था, माई न्यू बुक द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर इज मोर देन जस्ट 400 पेज एक्सरसाइज इन फ्लॉक्सिनोसिनी हिलीपिलिफिकेशन। 2019 में सोशल मीडिया पर बड़ी मांग उठी थी कि थरूर को कांग्रेस का प्रधानमंत्री नॉमिनी बनना चाहिए। उनको खुद मना करना पड़ा था कि ऐसी कोई बात नहीं है। होमोसेक्सुअलिटी से जुड़ी आईपीसी की धारा 377 के भी खिलाफ उन्होंने बड़ा काम किया था, लेकिन संसद में वो पारित नहीं हो पाया। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसे संशोधित करने का आदेश दिया और इस तरीके से थरूर को लड़ाई में विजय मिली। शशि थरूर भारत में इंटरनेट युग के नेता हैं। जब वो भारतीय राजनीति में आए तो लगा था कि ऐसा नेता ज्यादा दिन चलेगा नहीं, क्योंकि तब राजनीति बिल्कुल अलग थी। इंटरनेट नहीं था और लोगों से वैसा कनेक्ट नहीं था। तब नेताओं को भी अपनी पुरानी राजनीति अच्छी लगती थी, लेकिन इंटरनेट युग के बाद भारतीय नेता भी युवाओं से जुड़ गए और उसी हिसाब से अपनी बातें और व्यक्तित्व भी बना लिया। आज के युवाओं की पहली पसंद है शशि थरूर। टीनेजर्स उनको खुद की तरह देखते हैं। भारत में जहां जनरेशन गैप एक बड़ा मुद्दा रहा है, वहां पर एक सांसद के साथ अगर इतने सारे युवा खुद को कनेक्ट करते हैं तो ये बड़ी उपलब्धि है। इस युग के लिए शशि थरूर एक अग्रणी नेता के तौर पर हमेशा याद किए जाएंगे। देश और दुनिया भर के नेताओं की इस यात्रा के साक्षी बने हर एपिसोड में
सभी प्रमुख पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स पर जियो सावन, गाना, एप्पल, आईट्यून्स और स्पॉटिफाई पर।